ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 11 जुलाई 1964। रिकॉर्ड चला है महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए। आत्माओं की प्रीति बनती है अपने पारलौकिक परम पिता परमात्मा बाप से। तो आत्माओं की बात हुई और देह अभिमानियों की प्रीति किससे बनती है? जो आत्मिक स्थिति में नहीं है, आत्मा नहीं बने हैं, अपन को आत्मा नहीं समझते हैं, देह भान में हैं, उनकी प्रीति किससे जुटती है? देहधारियों से। अपन तो जानते हैं कि हम आत्मा हैं और बाबा हम आत्माओं को यहां से ले जावेंगे। कहाँ ले जावेंगे? अपने धाम ले जावेंगे। किसी की आत्मा शरीर छोड़ जाने लगती है तो कितनी मेहनत करते हैं। जैसे सत्यवान सावित्री की कहानी है, उनको आत्मा को पिछाड़ी में लटक पड़ी कि फिर शरीर में आ जाए, परंतु उन सत्यवान सावित्री में तो ज्ञान था ही नहीं। तुम्हारे में तो ज्ञान है। हम हरेक की प्रीति बनी है परमपिता परमात्मा से। ये प्रीति हमारी क्यों बनी है? ये प्रीति बनी है इस दुनिया से मर जाने के लिए। कैसे मर जाने के लिए? अपने देह अभिमान से मर जाने के लिए। तो ये प्रीति तो बहुत अच्छी है। इस प्रीति के लिए आत्मा ने आधा कल्प भक्ति मार्ग में ठोकरें खाई हैं। ठोकरें खाई हैं कि अपने शांति धाम सुख धाम में जावे, और है भी बरोबर। बाप भी कहते हैं अशरीरी बनो, अर्थात शरीर से मर जाओ, देह से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से अपने ममत्व को मिटाए दो। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उनको मर जाना कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं इस दुनिया अथवा इस बंधन से तुम मर जाओ, अर्थात मेरे बन जाओ। इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में अब कोई भी मजा नहीं है। ये तो बहुत छीछी वैश्यालय है, रौरव नरक है। तुम बच्चों को कहते हैं अब मेरे बन जाओ, मैं आया ही हूँ सुखधाम ले जाने के लिए, जिस सुखधाम में दुख का नाम निशान नहीं होगा। इसलिए सीमा पर खुशी से परवाने बन करके जाओ। जो परवाने होते हैं ना, वो खुशी से दूर से उड़ते हुए आते हैं ना। कोई ऐसे होते हैं जो बत्ती जलती है तो जानते हैं कि अब हमने जन्म लिया, बत्ती जलते ही जन्मते हैं, और बत्ती अगर बुझ जाती है तो मर जाते हैं। दीप माला पर ढेर के ढेर छोटे छोटे पतले पतले हरे रंग के बहुत होते हैं, जो बत्ती पर आकर फिदा होते हैं। ये तो हद की बात हुई। वेद में क्या है, वेद में भी जब इस सृष्टि का अंत होता है, मनुष्य आत्माओं की दीपक जगने वाले होते हैं, असली दीपावली हम मनाते हैं, तो ढेर के ढेर आत्मा रूपी पतंगे इस सृष्टि पर आकर के जन्म लेते हैं, जन्म लेते हैं और आते ही समा पर परमपिता परमात्मा पर स्वाहा हो जाते हैं। तो देखो वो हद के पतंगे भी आए और मरे, और ये बेहद के पतंगे भी आए और ये मरे, तो ये बहुत भारी समय है। कौन? परमपिता परमात्मा। बाप कहते हैं अब तुम पतंगे मिशन फिदा हो जाओ, तुम तो हो चैतन्य मनुष्य, जो भी देह के संबंध है ये सब जीते जी छोड़ दो। वो दुनिया वाले तो कब छोड़ते हैं, हैं? जब शरीर से मरते हैं तब छोड़ते हैं। और तुमको क्या करना है, ये शरीर रहे, शरीर रहते रहते जीते जीते तुम इन संबंधों को, देह को, देह के पदार्थों को, इनके ममत्व को छोड़ दो, अपन को आत्मा समझो और मेरे साथ प्रीति रखो। लाडले बच्चे अब पुरानी दुनिया और उस पुराने शरीर का अभिमान छोड़, मेरे साथ योग लगाओ, खुशी में रहो, तो ये फिर शरीर का बांध छूट जाएगा। हम आत्माएं इस दुनिया को छोड़कर अपने घर जाते हैं, ये दुनिया अब हमारे कोई काम की नहीं है, तो फिर हम इस दुनिया से दिल क्यों लगावे? इस दुनिया में तुम बहुत गरीब हो। क्या? इस दुनिया में तुम बहुत गरीब हो। तुम माने हैं? गरीब होने वाले बच्चे कितने हैं जो इस दुनिया में बहुत गरीब हैं? 4.5 लाख बच्चे हैं जो इस दुनिया में बहुत गरीब बन पड़े हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब आशारीरी बनो, देह अभिमान में आने के कारण तुम इतने गरीब बन गए, अभी समझो हम आत्माएं वहां शांति धाम की रहने वाली है, अभी उस शांति धाम में कोई नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि सब अपवित्र हैं। जब तक पवित्र न बने तब तक शांति धाम कोई वापस जा ही नहीं सकते। वो पवित्र धाम है, पावन धाम है, इस समय सभी के पर टूटे हुए हैं। कौन से पर? ज्ञान योग के पंख सभी के टूटे हुए हैं, और सबसे जास्ती पंख टूटे हुए हैं इन गुरुओं गोसाइयों के, इन साधु संत महात्माओं के, वो आपन को ही भगवान मान बैठे हैं। तो जब आपन को ही भगवान मान बैठे हैं तो कहां ले जावेंगे? बिल्कुल ही पंख टूटे हुए हैं, जिसके कारण खुद भी नहीं जा सकते, तो फिर ये गुरु लोग तुम्हारी सदगति कैसे करेंगे? खुद ही दुर्गति में है। इसलिए भगवान ने कहा है कि साधुओं का भी मुझे आकर उद्धार करना पड़ता है। सिर्फ वो समझते हैं कृष्ण भगवान वाच। अब कृष्ण भगवान वाच तो है नहीं, हाँ शिव आशारीरी है, तो वाच कैसे करेंगे? तो जरूर मुख द्वारा समझाना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ही समझावेंगे। क्या कहा कि कृष्ण के मुख से समझावेंगे? कौन सा मुख चाहिए? वो मुख चाहिए जो इस सृष्टि पर अंत तक मौजूद रहता है। सृष्टि के आदि में तो मौजूद होगा ही, लेकिन सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक इस सृष्टि पर वो 500-700 करोड़ प्रजा का पिता मौजूद रहता है। से सिद्ध होता है कि मनुष्यों की रचना किससे होती है? प्रजापिता से होती है। नहीं तो पहले मनुष्य थे या नहीं थे? अरे प्रजापिता से पहले मनुष्य थे या नहीं थे? मनन चिंतन मंथन करने वाले को, मन का उपयोग करने वाले को ही मनुष्य कहा जाता है। मननात् मनुष्य है। मनन चिंतन मंथन न करे तो वो मनुष्य नहीं है। क्या है? जानवर, पशु, पक्षी आदि कहा जाता है। ये तो सब जानते हैं कि कोई से भी पहले ये दो बातें पूछो तो उनको महसूस हो बरोबर बाप बच्चों को किस लिए रचते हैं। बाप रचते हैं बच्चों को अपना वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रचा है। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाप आते ही हैं दुनिया को बदलने के लिए। नरक को स्वर्ग और मनुष्य सृष्टि को दैवी सृष्टि बनाने के लिए। तो वो ही सुख देने के देने के लिए आवेंगे ना। भले यहाँ इस सृष्टि पर मनुष्य पदमपति है, बहुत बड़ी बड़ी महलमाणियां हैं, परंतु तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो उससे तुम बड़ा ऊंच पद पावेंगे। जिस्मानी पढ़ाई वाले समझेंगे हम बैरिस्टर बनते हैं, IAS बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो है हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। कितना ऊंचे ऊंचे पद है। तो भी एक जन्म के लिए नहीं है, 21 जन्मों के लिए है। ये पढ़ाई ऐसी है जो 21 जन्म हम कब रोगी नहीं बनते हैं, 21 जन्मों में भी कब हमारी अकुल मृत्यु नहीं होती है। परंतु ये सब किसके लिए है? जो परवाने बाप को अपना बनाते हैं, बाप उन परवानों को गोद में लेते हैं। जो गरीब होंगे वो साहूकार के बच्चे तो गोद में नहीं लेंगे। जो गरीब के बच्चे होंगे वो साहूकार की गोद लेंगे। अभी तुम सब तो बिल्कुल गरीब हो। तुम जानते हो ये मेलमाणिया आदि सब खत्म हो जाएंगी। हम ही विश्व के मालिक बनने वाले हैं। मालिक थे अब नहीं है, अभी हम फिर मालिक बनेंगे। सारी सृष्टि का मालिक और तो कोई बनता ही नहीं है सिवाय तुम्हारे। बहुत आए जिन्होंने कितनी मेहनत की कि हम सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करें। हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, परंतु कोई भी सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल نہیں کر سکے. ایسے بھی نہیں کہ راجہ کی بڑی آئی ہوگی اور پرجا کی کم آئی ہوگی, نہیں. یتھا راجا تتھا پرجا, راجاؤں کی وہی ایوریج آئے ہو اور پرجا کی بھی وہی ایوریج آئے ہو. 11/7/64 کی وانی کا دوسرا پیج. یہ تھا راجا رانی, یہاں تو پرنس بھی چھوٹی آیو میں مر پڑتے ہیں, راجا ہی بھی نہیں ملتی, پہلے ہی مر پڑتے ہیں. بہت ایسے بھی ہوتے ہیں جو جنمتے ہی مر پڑتے ہیں. راجا ہی جیسے کہ جنم لیتے تک ملی یا نہ ملی. ابھی تم بچے جانتے ہو, ہم یہاں بیٹھے ہیں بے حد باپ کے آگے, آتما شریر دھارن کر پارٹ بجاتی رہتی ہے. ابھی جانتے ہیں ہماری آتما کا باپ آیا ہوا ہے, پرانے بندھن سے چھڑا ہے نئے سمبندھ میں جٹانے کے لیے. برابر تم سوکشم وطن ویکنٹھ وطن میں جاتے ہو, وہاں ملتے جلتے ہو, تمہارا کنیکشن ہو گیا بے حد کا. یہ کیسا اچھا کنیکشن ہے. تم اپنے سسر گھر جا سکتے ہو. میرا کا بھی کنیکشن سسر گھر سے تھا, چاہتی تھی سسر گھر میں جاؤں. اب یہ تو جانتے ہو یہ تو سسر گھر نہیں ہے, یہاں تو تم بالکل غریب ہو. یہ کس کا گھر ہے؟ یہ سسر گھر نہیں ہے تو کس کا گھر ہے؟ کس کا؟ یہ سسر گھر نہیں ہے تو سسر گھر کون سا ہوگا؟ ارے وشنو کا گھر ہوگا سسر گھر, اور یہ ہے برہما کا گھر, دکھ دھام ہے. برہما کی مرتیو کہاں ہوتی ہے؟ دکھ دھام میں مرتیو ہوتی ہے. تو تم بھی دکھ دھام میں ہو, بالکل غریب ہو, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ابھی اس بھارت میں کیا رکھا ہے؟ بل گاتے ہیں بھارت ہمارا بہت اونچا دیش ہے. ہاں تھا تو ضرور, ابھی نہیں ہے. گاتے ہیں بھارت ہمارا سب سے اونچا دیش, سونے کا ہندوستان تھا, اب نہیں ہے. جب تھا اس کی مہیما کرتے ہیں, ابھی تو دیکھو سونے کی کیا حالت ہو گئی ہے. زیور آدی سب لے لیتے ہیں, بیچارے چھپا کر رکھتے ہیں, کہاں اس سونے کو ڈالوں, کہیں کوئی لوٹ کر نہ لے جائے. گورنمنٹ بھی لوٹے رہی, پرنتو یہ تو ہے ہی ڈاکوؤں کا راجے. راجے کس کا ہے؟ راجے کرنے والے کون ہیں؟ راجے کرنے والے یہاں ڈکیت ہیں. وہاں تو بے شمار سونا ہوگا, نشانیاں بھی لگی ہوئی ہیں. سومناتھ کے مندر میں نشانیاں ہیں, منیا آدھے مسلمانوں نے جا کر کے قبروں میں لگائی دی جو انگریز لوگ لے گئے. ابھی نشانیاں لگی پڑی ہیں. تو بھارت اتنا ساہوکار تھا, ابھی دیکھو بھارت کا کیا حال ہو گیا. ابھی تم بچے جانتے ہو ہم باپ کے بنے ہیں سورگ کا مالک بننے کے لیے. بابا آیا ہوا ہے, آگے بھی آیا تھا, شیوراتری بھی کہتے ہیں, اس بات کی یادگار ہے. بابا کے آنے کی یادگار ہے تو کب آیا؟ کہتے ہیں شیوراتری کو آیا. شیوراتری کہتے ہیں یا مہا شیوراتری کہتے ہیں؟ مہا شیوراتری کہتے ہیں. اس کا ارتھ کیا ہوا؟ کہ جب سارے سنسار میں بڑے تے بڑی اگیان کی راتری ہو جاتی ہے تب شیو بابا آتے. دنیا کے لوگ تو اگیان میں ہوتے ہی ہیں, براہمنوں کی دنیا کے لوگ بھی اگیان میں آ جاتے ہیں. براہمنوں کی دنیا میں بھی جنہیں ایڈوانس کہا جاتا ہے, ایڈوانس براہمن, وہ بھی اگیان کے اندھیرے میں آ جاتے ہیں. ایسی مہان شیوراتری میں آتا ہوں. اب راتری کرشن کی بھی کہتے ہیں اور شیو کی بھی راتری مناتے ہیں. कृष्ण का जन्म कई बजे मनाते हैं? रात्रि को 12 बजे मनाते हैं, शिव की भी रात्रि कहते हैं। तो फिर फर्क क्या हुआ? जरा सा फर्क है। इन बातों को तुम बच्चे अभी जानते हो, क्या फर्क है? जरा सा माने कितना फर्क है? हैं? एक सेकंड का फर्क समझो। कृष्ण का जन्म पहले होगा या बाप का जन्म पहले? बाप का जन्म पहले। कृष्ण दिन में जन्म ले अथवा रात में ले, इन बातों में रखा ही क्या है? उस दिन और उस रात की तो बात है ही नहीं। रात्रि कृष्ण की मनाना वास्तव में रंग है। क्यों? कृष्ण अज्ञानी की रात्रि में होता है तब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, कि ज्ञान में आ जाता है तब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है? कृष्ण अर्थात दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल। ब्रह्मा की सोल अभी अज्ञान रात में है या ज्ञान की रोशनी में है? अज्ञान की रात में है। बढ़ते बड़ा अज्ञान भरा पड़ा है। गीता का भगवान, गीता का भगवान कृष्ण। परंतु ऐसे तो है नहीं कि बच्चा बुद्धि गीता का भगवान हो सके। तो देखो वास्तव में ये शिव की रात्रि है, परंतु बेहद की बात है, हद की रात्रि की तो बात ही नहीं है। और है भी शिव भगवान वाच, उन्होंने शिव को भूलकर कृष्ण की रात्रि लिख दिया है। जब रात पूरी हो तब तो दिन शुरू हो, टाइम भी ऐसा दिखाया है। अब तुम बच्चे जानते हो कृष्ण जयंती में भी कुछ रखा नहीं है। बड़े ते बड़ी हीरे तुल्य जयंती किसकी है? एक शिव बाबा की है हीरे तुल्य जयंती। कहेंगे कि जयंती है तो शिव की है, बाकी तो साहब की कौड़ी तुल्य जयंती है। बेहद की रात पूरी हो फिर दिन शुरू होता है। बाप आते ही है बेहद का दिन बनाने, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब ये ब्रह्मा कहाँ से आया हैं? कहाँ से आया हैं? ये ब्रह्मा कहाँ से आया? गर्भ से तो नहीं निकला, गर्भ से तो जन्म नहीं हुआ। इस ब्रह्मा का माँ बाप कौन है? कौन है? अरे अरे, हम बच्चों को तो पता होना चाहिए। इस ब्रह्मा जिसके नाम से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय देश देश में, शहर शहर में, देश देशांतर में खुले हुए हैं, ये ब्रह्मा का बाप कौन है? हाँ, ब्रह्मा का बाप है प्रजापिता। तो माता भी होगी कि नहीं? वो माता कौन है? जगदम्बा माता है। कितनी विचित्र बातें हैं, बाप आकर के अडॉप्ट करते हैं। इसलिए गाया जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे। हम सब आत्माएं आपके बच्चे हैं। आत्मा ही पढ़ती है, इन आर्गन से सुनती है, बच्चों को ये यादगिरी भूल जाती है, देह अभिमानी में आ जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम आत्माएं अविनाशी हो और ये शरीर विनाशी है। बताओ 84 जन्मों का पार्ट आत्मा में नुधा हुआ है या शरीर में नुधा हुआ है? शरीर रिकॉर्ड है या आत्मा रिकॉर्ड है? आत्मा चैतन्य रिकॉर्ड है जिसमें 84 जन्मों का पार्ट नुधा हुआ है। तो बताओ कि पुनर्जन्म कौन लेते हैं? जरूर कहेंगे आत्मा दूसरा शरीर लेती है पार्ट बजाने के लिए। आत्मा जानती है हमने 84 जन्म लिए, बाप ने समझाया है मुझे याद करो ये तुम्हारा अंतिम जन्म हीरे जैसा जन्म है। जो बाप के बनते हैं उनका हीरे जैसा जन्म होता है। क्या कहा, जन्म कब होता है? है ज्ञान लेने मात्र से नहीं बाप के बनते हैं। साप्ताहिक कोर्स ले लिया, भट्टी भी कर ली, नहीं कब बनते हैं बाप के? हैं? हीरे जैसा तब बनते हैं जब बाप के बनते हैं। बाबा मैं आपका बच्चा हूँ इस सृष्टि में, अब मेरा बाप माई बाप आप ही हो। तुम्हारी आत्मा शरीर साथ परमपिता परमात्मा की बनी है, अब आत्मा हीरे जैसा बनती है। कैसे बनती है हीरे जैसा? है शरीर के साथ हीरे जैसा बनती है या बिना शरीर के हीरे जैसा बनती है? शरीर के साथ तुम पुरुषार्थ करते हो, बाप के बनते हो, तो सिर्फ आत्मा बाप की बनती है या शरीर भी बाप का बन जाता है? तन मन धन सब तेरा। अब आत्मा हीरे जैसी बनती है अर्थात प्योर सोना बनती है 24 कैरेट। अभी कोई कैरेट नहीं रहा है। सोना चमकता होता है ना, मुलम्मा बनाए देते हैं तो कोई उसमें कैरेट नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को सन्मुख बैठ सुनने से बौद्ध मन की भाषा आती है, यहाँ ही मुरली बजती है। कहाँ? मधुबन में। है मधुबन में ही मुरली बजती है? क्यों माउंट आबू में नहीं बजती है? पहले बजती थी है? मुरली बजती थी तो अर्थ समझते थे? फिर है समझते तो नहीं थे, यहाँ ही मुरली बजती है, इसका मतलब क्या हुआ? कहते हैं मधुबन में मुरलिया बाजे, मधु कहा जाता है मिठास को, शहद को हनी, और बन माने जंगल। तो जहाँ जिन बच्चों के संगठन में मधुर जैसी शहद जैसी मधुर मिठास हो और जंगल जैसी वैराग वृत्ति हो, दोनों ही बातें हों, तो उन बच्चों के संगठन को मधुबन कहा जाता है। ऐसे मधुबन में बाप की मुरलिया बजती है। बल बाबा कहाँ जाता भी है परंतु इतना मजा नहीं आवेगा, क्योंकि मुरली सुनकर के फिर मित्र संबंधियों आदि माया के राज्य में चले जाते हो। यहाँ तो तुम भट्टी में रहते हो, यहाँ तुम राजाई प्राप्त की के लिए पढ़ रहे हो। ये तुम्हारे रहने के लिए हॉस्टल है क्या? क्या हॉस्टल है? तुम्हारा हॉस्टल कौन सा है? ये मधुबन तुम्हारा हॉस्टल है। हॉस्टल में क्या करते हैं? पढ़ाई भी पढ़ते हैं और हाँ खाना रहना सोना भी हॉस्टल में ही होता है। घर के भी और बाहर के भी कितने आकर के रहते हैं। तुम यहाँ स्कूल में बैठे हो, गोरख धंधे आदि कुछ भी नहीं है, आपस में ही चिट चैट ज्ञान की करते रहते हो और कोई दुनिया की बात तुम नहीं सुनते हो। हैं? यहाँ दुनिया भी कोई बातें सुनने को मिलती है नहीं? एक दो को यही ज्ञान की पॉइंट सुनाओ, रिपीट कराओ, पॉइंट्स याद करनी है और दूसरों को करानी है। यहाँ तुम जो सुख पाते हो, जो भी तुमको धारणा होती है वो बहुत अच्छी है। 11 जुलाई 1964 की वाणी का 3रा पेज। हॉस्टल में थोड़े दिन के लिए आते हो, कोई 8 दिन के लिए आते हैं, कोई 10-12 दिन के लिए आते हैं, तो उनकी ये भट्टी है, बाप से सुनते रहते हैं, दिल में ये निश्चय हो जाए हम माता पिता के साथ घर में बैठे हैं, क्योंकि तुमको यहाँ नशा बहुत अच्छा चढ़ता है, साथ बैठते हैं ना, बुद्धि समझती है हम घर में बैठे हैं, मम्मा बाबा और बच्चे के बच्चे घर में बैठे हैं, तो ये ईश्वरीय घर है। इसे दर कहो घर कहो बात एक ही है, दर दरवाजे को कहा जाता है, दर आया तो घर भी आया, दर से अंदर घर में आया। तो यहाँ ये ईश्वरीय घर है, पहले घर में जाते हो कि दरवाजे में जाते हो, हैं? पहले दरवाजे में जाना जाता है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, गेट वे टू हेवन इज है, गेट वे टू हेवन इज महाभारत। ये महाभारी महाभारत युद्ध स्वर्ग के गेट अर्थात दरवाजा खोलेगा। तो तुम ये समझ गए हो कि ईश्वरीय घर है, ये भाई बहने हैं, यहाँ मिक्सचर नहीं है, इसलिए इनको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। किसलिए कहते हैं इंद्रप्रस्थ है? इंद्र ने ऐसा स्थान बनाया प्रकृष्ट रूप से जहाँ सब एक जैसी संगठन की आत्माएं रहती हैं, सब सूर्यवंशी रहते हैं, कोई भी और वंश का नहीं रहता, इसलिए इनको इंद्रप्रस्थ कहते हैं। सभी ज्ञान शब्द पर यह है नंबर वार, नाम रख दिए शिव बाबा की दरबार। यहाँ से तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारी अवस्था में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। सर्विस पर जाने वालों की बुद्धि में तो यही रहता है कि सर्विस करें, बाप समझाते हैं अपनी जांच पूरी रीति करते रहो, देखो कहाँ तक हमारे बंधन टूटे हैं, क्या युक्ति रचे हैं जो हमारे बंधन जल्दी टूट जाए और हम जाए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दूसरों को करें। क्या कहा? किस प्रयास में लगे रहना चाहिए है? दुनिया भी बंधन टूट जाए, अगर दुनिया भी बंधन टूट जाएंगे तो क्या होगा, तो हम कौन से धंधे में लग जाएंगे? अविनाशी ज्ञान धंधों के दान में लग जाएंगे। तो किस युक्ति से अपन को इस जेल से छोड़ावे, फिर बाबा कहाँ भी सर्विस पर भेजे, यहाँ जाकर के समझाओ, बाबा कहेंगे ये सर्विस करो, और कृपा करके दिल अंदर एक बात पक्की रखो, क्या? कि हम सब पर रहम करेंगे। कौन सा रहम? सब को समझावेंगे। समझाने की बात में हमारा कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं है, सबको समझावे। पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव से तुम्हारा क्या संबंध है, ये बात सभी को बताना है। पतित पावन कहने से परमात्मा की तरफ ही बुद्धि जाती। बाबा रोज कहते रहते हैं, छोटा बोर्ड बनाए उस पर ये लिख दो, परंतु किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है, युक्ति रचते ही नहीं है। बाबा ने बहुत अच्छा समझाया था, एक भी बनाकर नहीं आया, लिखत बहुत अच्छी है, बहुत फर्स्ट क्लास छपवाना है, परंतु कोई संबंध ना होता है। बाप का पक्का संबंध जुड़े तो प्रबंध भी करें, कोई ऐसा नहीं है जो अटेंशन दे और झट बनावे, है बहुत सहज। ऐसी बुद्धि कोई की नहीं है जो काम करके दिखलाए। माया बहुत गफलत में ले आती है, डायरेक्शन अमल में नहीं ले आते हैं। ऐसा बोर्ड ऐसा कार्ड अपने घर में भी लगाओ तो तुम्हारे पास बहुत आवेंगे। اس پر سمجھانا تو بہت سہج ہے. بولو وہ باپ ہی تمہارا ڈاڈا ہے. باپ ڈاڈے ہوتے ہیں نا, یہ تمہارا بابا ہے, یہ تمہارا دادا ہے. دادا بڑے بھائی کو کہا جاتا ہے, دادا کہا جاتا, ڈاڈا کہا جاتا ہے گرانڈ فادر کو. تو باپ دادا دونوں ہیں. ترمورتی کی چتر پر بیٹھ سمجھاؤ, کیا یہ ہے تمہارا باپ اور یہ ہے تمہارا دادے, کون ہے؟ ترمورتی کی چتر میں کون باپ ہے اور کون دادے ہے؟ برہما ہے باپ اور پرجاپتا برہما ہے دادے, ٹھیک. لیکن کوئی کی بدھی کام نہیں کرتی.
تینوں
مورتیاں برہما کی ہیں, لیکن ہاں لیکن تینوں مورتیاں برہما کی کیسے؟ بوئی باپ ہوگا, بوئی ڈاڈے ہوگا, ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ بوئی بھگوان ہے, بوئی بھگوان کے بندے ہیں, بوئی بھگوان باپ ہے, بوئی بھگوان کا بچہ ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ الگ ہوتا ہے, بچہ الگ ہوتا ہے. یہ تو کہہ دیتے ہیں آتما سو پرماتما. تو سنیاسی لوگ کہتے ہیں آتما سو پرماتما, یا ہم لوگ کہیں گے؟ تو سنیاسی ہیں اس لیے کہتے ہیں آتما سو پرماتما. ترمورتی برہما مرلی میں بابا کہتے ہیں, یہ بھکتی مارگ والے بولتے ہیں ترمورتی برہما. تم تھوڑے ہی کہیں گے ترمورتی برہما. برہما کی تین مورتیاں تھوڑے ہی ہیں, یہ تو شیو بابا کی تین مورتیاں ہیں. تو ان پر سمجھانا تو بہت سہج ہے. سمجھاؤ, وہ تمہارا ڈاڈا ہے, یہ بابا ہے. ورثہ تم کو ان دادا سے نہیں ملتا ہے, ورثہ تم کو ان سے ملتا ہے, ان سے نہیں ملتا ہے. یعنی جو بازو میں بیٹھا ہے برہما, ان سے ورثہ نہیں ملتا ہے, ورثہ تم کو ان سے ملتا ہے. ان سے میں نے دور کیوں کر دیا؟ کیونکہ بھوشیہ میں سن 76 میں پرتیکش ہونے والا ہے, اوپر میں ترمورتی بھی لگا ہوا ہو. ترمورتی نہ لگائیں تو بھی کوئی ہرجا نہیں. ترمورتی میں نیچے والے اکثر بہت اچھے ہیں. پتت پاون پرم پتا پرماتما شیو سے تمہارا کیا سمبند ہے؟ پرجا پتا برہما سے تمہارا کیا سمبند ہے؟ کتنا سہج ہے سمجھانا. بابا بہت سمپل آئیڈیا دیتے ہیں, پرنتو کسی کی بدھی میں نہیں آتا ہے کہ بابا کو کچھ بورڈ آدھی بنا کر کے دکھاوے. چھپانے میں بھی دیری نہیں لگتی ہے, خرچہ تو گورنمنٹ دیتی ہی ہے. گھر میں صرف یہ بورڈ لکھا ہوا ہو, بوڑھی بوڑھی ماتائیں بھی اس بورڈ پر بہت اچھا سمجھا سکتی ہیں. نراکار پرم پتا پرماتما ہے, ہم آتماؤں کا باپ, اس باپ سے ورثہ لینا ہے. ایک ایک اکشر سے تم کوئی کا جیون ہیرے جیسا بنا سکتے ہو. پرنتو پتا نہیں مایا بدھی کو کیا کر دیتی ہے, سروس کرنے ہی نہیں دیتی ہے. جتنا تم زور سے پرسارتھ کرتے ہو اتنا پھر زور سے مایا بدھی کو تالا لگائی دیتی ہے. کیوں تالا لگائی دیتی ہے؟ کیونکہ سروس کی بات پر تم دھیان ہی نہیں دیتے ہو. کیا دے ابھیمانی کی ڈس سروس کی باتوں پر تمہارا دھیان بہت جلدی چلا جاتا ہے, یہ بھی نہیں سمجھتے ہو. بابا کہتے ہیں ضرور اس میں کوئی کلیان ہوگا, یہ خیالات نہیں آتا ہے تو گویا شیو بابا کو ہی اڑائی دیتے. سادھارن تن میں بابا آیا ہوا ہے نا, شیو بابا کو کیوں اڑائی دیتے ہیں؟ سادھارن تن میں آیا ہوا ہے تو بدھی میں بیٹھتا ہی نہیں ہے کہ شیو بابا آیا ہے. کیسے سمجھیں کہ ان میں پرم پتا پرماتما آتے ہیں؟ بچوں کی بدھی میں کچھ نہیں آتا ہے, اچھل نہیں مارتے ہیں, اس لیے ٹھنڈی سروس ہو جاتی ہے, بیچاروں کا کلیان نہیں کرتے ہیں. بابا تو گھر گھر نہیں جاویں گے, کیوں हैं? बाबा घर घर में क्यों नहीं जावेंगे हैं? अरे कोई कारण है कि नहीं है? अरे बाबा अपने बच्चों के घर जावेंगे या दूसरों के घर में जावेंगे हैं? बाबा तो अपने बच्चों के घर में जावेंगे, सबके घर में नहीं, क्राइस्ट के बच्चों के घर में थोड़ी जावेंगे, या गुरु नानक के बच्चों के घर में थोड़े जावेंगे। किसके घर में जावेंगे? अपने बच्चों के घर में जावेंगे। बाबा देखते हैं माया बिल्कुल ही सुस्त बनाई देती है, 5-10 को लाया बस समझते हमने बड़ी कमाल कर दी। खुद ब्राह्मण भी ऐसी बुद्धू है, बाप के पास तो खुशी में डांस करते हुए आना चाहिए। विलायत से मुसाफरी करके आते हैं तो कितनी खुशी होती है, दर से अंदर घुसते ही एकदम गले में लग पड़ते हैं। ये तो सभी दुखों से छुड़ाने वाला बाप है। ऐसा बाप तो फिर 5-4 वर्ष में एक ही बार आकर के मिलता है। कितना लव होना चाहिए। 11/7/64 की मेहरबानी का चौथा पेज, कितना याद आना चाहिए। तुम बाप को भूल जाते हो, वेद के बाप का कुछ जानते ही नहीं, कुछ मानते ही नहीं। बाबा गुप्त आए कितनी बच्चों की अच्छी अच्छी बातें सुनाते। बुढ़िया भी इस पर घर में किसको समझा सकती हैं, कहेंगे वाह ऐसे बाप से तो जरूर वर्षा पाने के लिए कुछ मिलना चाहिए। रात दिन युक्तियां निकालनी चाहिए, कैसे किसको समझावे। ये तुम्हारा बोर्ड देख करके बहुत समझने के लिए आवेंगे, इनमें युक्ति बहुत अच्छी है, सर्वव्यापी के ज्ञान से जाग उठेंगे। बाबा जगाने की युक्ति बताते हैं, बड़े बड़े स्थानों पर ये बोर्ड लगाओ, ऐसे नहीं एक कान से सुनाओ दूसरे कान से निकाल दिया, बाहर गए तो धंधा धोरी में लग गए, खलास। काम करने वाला कोई नहीं है, प्रदर्शनी बन रही है। क्या कहा, कब बनी प्रदर्शनी? ये प्रदर्शनी के ढेर जो चित्र बने हैं वो कब बने? 64 की वाणी है। तो प्रदर्शनी बन रही है, उसमें भी पहले पहले ये समझाना है कि पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है। हाँ 64 की वाणी है, तो 64 में ये चित्र बने थे, इसीलिए बाबा ने बोला कि प्रदर्शनी बन रही है। पूरे चित्र है, 4 चित्र है मुख्य, वो प्रदर्शनी के चारों चित्र कब पूरे हुए, कौन से सन में बने? 67 में बनकर तैयार हुए। बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखा हुआ हो, जो समझाने वाले अच्छी समझा सके। प्रदर्शनी बनाने में भी, किसको समझाने में भी बहुत अच्छा माथा चाहिए। छोटे छोटे घोड़े हाथी पता नहीं क्या क्या बनाए देते हैं, तो मनुष्यों की बुद्धि उन खिलौने में चली जाती है। पहले तो मुख्य बात समझाए कर लिख देना चाहिए, बरोबर बाप है जिससे ये बीके वर्षा लेती है, लिखा लेना चाहिए। बाकी हंसी कुड़ी में ही ध्यान चला जाता है, जैसे कि कविता सुनाते हैं, अपना हुनर दिखाते हैं। ये ज्ञान तो यहाँ सबको है, क्या कविता बनाना, हुनर दिखाना, डांस करना, गीत गाना, संगीत गाना। तुम बच्चों को तो सर्विस बहुत अच्छी कर रही है, सबका कल्याण करना है। ऐसे ही नहीं सिर्फ बाप राय निकाली फिर सो जाना है। अरे जैसे बाप राय निकालते हैं ऐसे तुम बच्चे भी राय निकालते रहो, फिर दूसरों को समझाते रहो। बहुत सहज कर बनाना है ताकि पिछाड़ी में इशारे से समझ जाएं। पिछाड़ी को सब बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे तो इशारे से समझते जावेंगे, तुम ताकतवान होते जावेंगे। अंदर कोई खराबी नहीं रहनी चाहिए। सुंदर सुंदर छोकरी देख करके कईयों का तो माथा ही खराब हो जाता है, देह अभिमान में आए कुमारी से बातें करने लग पड़ेंगे। कौन सी कुमारी से? ज्ञान सुनाने वाली कुमारी से बातें करने लग पड़ेंगे, नाम बदनाम कर देते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं। इस ब्राह्मणों की दुनिया में भागे और निभागे दोनों ही होते हैं। जो सौभाग्य होते हैं वो बाप की नॉलेज को धारण करेंगे। वो कौन हुए जो यहाँ आते किस लिए हैं? सौभाग्यशाली बनने के लिए तो बाप की नॉलेज धारण करते हैं, और जो निभागे कहेंगे हम तो शादी करेंगे। ज्ञान की बातें उन्हें जैसे अच्छी लगती नहीं। बाबा समझाते हैं तूफान बहुत आवेंगे, कर्म इंद्रियों से कुछ नहीं करना है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा, नाम बदनाम कर देते हैं, दिल खाती भी रहती है। शिव बाबा तो सब जानते हैं हम क्या क्या करता हूँ। विकर्म करेंगे तो शिव बाबा अच्छी तरह खाल उतारेंगे, छिपाते तो बहुत है ना। कभी बुरा काम होता है तो तुरंत लिख करके भेजना चाहिए, नहीं तो उस काम में वृद्धि होती जाएगी। श्रीमत पर चलना है, नहीं तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। ऐसी ऐसी मिस्टेक्स करने लग पड़ते हैं, फिर बहुतों के ऊपर सितम आ जाते हैं, अखबारों में भी नाम पड़ जाता है। ऐसा क्यों लिखना चाहिए? अंदर आने की मना है, हैं? कोई कोई बाहर बोर्ड टांग देते हैं, क्या अंदर आने की मना है? अरे तुमको लिखना है भाई बहन हो, आकर के समझो, तो दरवाजा सदैव खुला हुआ होना चाहिए ना। बाप समझाते हैं खबरदार रहो, शिव बाबा तो हाजरा हुजूर है ना, जो तुम्हारे विकर्म को जानते हैं, बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए, एक एक मुरली 10 बार पढ़नी चाहिए। एक बार पढ़ने में कितना टाइम लगता है, हैं? 1 घंटा, चलो 2 घंटा कोई कोई को लग जाता हो, लैंग्वेज नहीं जानते होंगे, तो पूरी मुरली 10 बार पढ़ने में कितना घंटा लगेगा? सारा दिन यही करते रहे क्या? 10 बार पढ़नी चाहिए। कई बच्चे तो मुरली पढ़ते ही नहीं हैं, तो औरों को क्या समझावेंगे? माया सौभाग्य के बदली दुर्भाग्यशाली बनाई देती है। बाबा समझाते हैं बच्चे जल्दी करो, टाइम थोड़ा है, बाप को और षष्ठी चक्र को अच्छी रीति याद करना चाहिए। बाप और वर्षा याद रहे तो तुम्हारा चेहरा खिल जाएगा। अच्छा, मीठी मीठी सीताएं जो रावण के बंधन में छूट राम के संबंध में जाती हैं, ऐसे मीठे मीठे पुरुषार्थी बच्चों को माता पिता का याद प्यार गुड मॉर्निंग।